सुरक्षित महानुभाव सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, मनुष्य के जीवन में शांति मुक्ति और भक्ति की ओर विकास का जो क्रम है उसमें सबसे आवश्यक बात मुझे यह मालूम होती है कि हमारे जीवन में उस ओर आगे बढ़ने का उत्साह होना चाहिए और कोई योग्यता अपेक्षित नहीं है। अभी जैसा कि हम लोगों ने संतवाणी में सुना, वो क्या सुना कि यदि आप शांत होना, मुक्त होना, भक्त होना नहीं चाहते हैं तो फिर अपने लिए कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप जब इस जीवन की आवश्यकता अनुभव करेंगे तो उसी से बड़ा भारी विकास आरंभ हो जाएगा। अब देखिए, ये अपने लोगों की एक दशा है, ये जीवन नहीं है, ये दशा है। क्या दशा है कि आंखों से जो दिखाई देता है उसमें हम लोगों का विश्वास भी बन जाता है और उसके प्रति एक खिंचाव भी बन जाता है। विश्वास भी बनता है, खिंचाव भी बनता है। तो यद्यपि हम इस बात को जान रहे हैं, केवल इंद्रियों के आधार पर नहीं, बुद्धि के आधार पर भी हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि जिन शरीरों के माध्यम से संसार में अनेक प्रकार का सुख भोग किया मैंने, वह शरीर दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है और किसी न किसी क्षण में ये मेरा साथ छोड़ देगा। इस बात की जानकारी हम लोगों को है कि नहीं है? है। अब कठिनाई क्या हो जाती है, कहीं भी जाओ सत्संग में और किसी मजहब के मानने वाले क्यों न हो, कठिनाई इतनी सी हो जाती है कि देखा हुआ संसार एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, प्रत्येक क्षण में बदलता रहता है। फिर भी वही संसार अपने लिए जीवन का आधार मालूम होता है और जो परमात्मा एक क्षण के लिए भी किसी से अलग नहीं होता, वह परमात्मा अपने से बहुत दूर छिपा हुआ और अप्राप्य मालूम होता है। ऐसा लगता है कि परमात्मा को पाना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। तो स्वामी जी महाराज ने मानव जीवन की एक समस्या हम लोगों के सामने रखी और ये कहा कि थोड़ा सोच करके देखो तो तुम। क्या सोचें? ये सोच करके देखो कि जो संसार आज तक कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ, न होगा, वही संसार तुमको सत्य मालूम होता है। और जो परमात्मा कभी भी किसी से अलग नहीं होता है, न हुआ न होता है न होगा, वही परमात्मा अपने से बहुत दूर मालूम होता है। तो तन में विश्वास करना, धन में विश्वास करना, कुटुंबियों में विश्वास करना, ये है विवेक विरोधी, लेकिन यही अपने को सत्य मालूम होता है, सहज मालूम होता है। और परमात्मा में विश्वास करना है सत्य, और वही अपने को कठिन लगता है। तो जो आज तक किसी को मिल न सका, मुझे भी कुछ मिला नहीं लेकिन मिला हुआ सा लगता है, और जो आज तक कभी अलग हुआ नहीं लेकिन वही अपने से बहुत दूर मालूम होता है, ऐसी दशा है कि नहीं है? है। जो चला गया वो मालूम होता है कि मेरा था, कितना बड़ा भ्रम है। जो पलक मारते आंखों के सामने से ओझल हो गया। एक माँ मुझसे बात कर रही थी, प्रिय वियोग की कथा कह रही थी, तो ये कह रही थी कि ऐसा लगा जैसे कि हम दोनों बैठ करके अभी बात कर रहे हैं और किसी ने स्विच ऑफ कर दिया, ऐसे झट से प्राणांत हो गया। तो ये मेरी आंखों देखी घटना है। इस अनिश्चित को मैंने अपने द्वारा अनुभव किया है, फिर भी हम उसी को सत्य मानने के लिए राजी हैं और उसी की अनुपस्थिति में संपूर्ण व्यक्तित्व जो है अस्त व्यस्त हो गया। इसका नाम है असत का संग। अब अनुभवी जन क्या सलाह देते हैं? अनुभवी जन सलाह ये देते हैं कि भाई जो तुम्हारी आंखों से ओझल हो गया, पलक मारते ही जिसके संयोग का अंत हो गया और बड़ा ही दुखद कठिन वियोग सामने आ गया, उसको तुम अब से सही अपना मानना बंद करो। पता चल गया ना कि मेरा होकर रह न सका, तो जो मेरा होकर रह न सका उसको मेरा कहना छोड़ दो। अच्छा, मेरा कहना छोड़ दे लेकिन 20 बरस, 30 बरस, 40 बरस एक साथ रह करके जो बिताया और अपने जीवन का एक संबल जिसको बनाया, उसकी याद कैसे मिटेगी? रह रह के उसकी याद आती है, इसका क्या करें? तो इसके बारे में यह बताया गया कि जब जब मृतक प्राणी की याद आती है और उसके वियोग में अपने को सब कुछ निराधार लग रहा है, तो उसकी याद आने पर उसे अपना न मानते हुए भी उसकी कल्याण कामना रखो, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे भी मोह मुक्त कीजिए, उस दिवंगत आत्मा को भी मोह मुक्त कीजिए, उसको अपनी शांतिमयी गोद में स्थान दीजिए। मैंने बड़ी भूल की कि बनने बिगड़ने वाले को अपना करके स्वीकार किया था, इस स्वीकृति से हम दोनों मोह के बंधन में जकड़ गए। हे परमात्मा, हम दोनों को मोह के बंधन से मुक्त कीजिए, मुझे भी शांति दीजिए, उन्हें भी शांति दीजिए, जहाँ रहे आनंद से रहे, जहाँ रहे शांति में रहे। ऐसा जब जब उस बिछुड़े हुए प्रियजन की याद आती है, तब तब उनके कल्याण के लिए अपनी ओर से प्रार्थना निकलनी चाहिए हृदय से। इसका फल क्या होगा? इसका फल ये होगा कि जब अपना जीवन मोह मुक्त हो जाएगा तो मृतक प्राणी का जीवन भी मोह मुक्त हो जाएगा। जब अपने को शांति मिल जाएगी तो बिछड़े हुए को भी शांति मिल जाएगी। यह अनुभवी जनों का अनुभव है, यह जीवन का विज्ञान है, इसके अनुसरण से कल्याण होता है। अब दूसरा पक्ष ले लिया जाए जो सदा सदा से अपना है, जिसने कभी भी मेरा साथ छोड़ा ही नहीं, उसको मैं अपना मानूं। बड़ी सच्ची बात है, बड़ी सीधी बात है, बहुत आवश्यक बात है। तो अब कठिनाई क्या होती है कि हम लोग जब उस बिना देखे बिना जाने सर्वव्यापी परमात्मा को अपना मानना आरंभ करते हैं, गुरु की वाणी पर विश्वास करके या वेद शास्त्र के वाक्यों में विश्वास करके अगर हम लोग उसको अपना मानने का साहस करते हैं तो भीतर से बड़ा निराधार लगता है कि देखा है ही नहीं, कहीं कुछ पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ है और कैसा है और क्या करता है और हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मानना भी चाहते हैं हम उनको और माना जाता भी नहीं है, डर लगता रहता है, संदेह होता रहता है कि क्या करें कैसे माने। तो समय समय पर बैठ करके अकेले में भी मैंने सोचा और स्वामी जी महाराज से भी बहुत बातचीत की तो मुझको एक खास बात मालूम हुई, और खास बात ये मालूम हुई कि ईश्वर में विश्वास करने का प्रश्न जब सामने आवे तो मत पूछो कि वो कहाँ है और कैसा है और क्या करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा जब हम पूछेंगे भीतर में ये तर्क और बुद्धि को प्रश्रय देंगे तो कभी भी मान नहीं पाएंगे। एक बात, इसलिए बुद्धि मत लगाओ। दूसरी बात क्या है, जब मेरे सामने ऐसा प्रश्न आया तो मैंने यूं सोचा कि अच्छा हुआ कि भगवान देखे हुए जगत में शामिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जितना जो कुछ मैंने देखा सुना वो सब मेरी मुट्ठी में से निकल गया। जितना मैंने देखा सुना समझा पकड़ने की कोशिश की वो सब मेरे हाथ में से निकल गया। बड़ा परिश्रम करके पढ़ना लिखना किया, बड़ा बढ़िया रिजल्ट पाया, बड़ी अच्छी नौकरी मिली, बड़ा बढ़िया पद मिला, मैं वही हूँ। और वृद्धावस्था आने के कारण से मेरी आवश्यकताएं बढ़ गई, अब किसी की सहायता चाहिए, अब अधिक आराम चाहिए, अब शरीर को अधिक संभाल चाहिए। तो जब शरीरों की आवश्यकता बढ़ गई तब आवश्यकता पूर्ति की सामग्री जो संसार ने दी थी वो छूट गई। मजा आ गया ना? वृद्धावस्था आई, अब ज्यादा सहारा चाहिए तो संसार ने क्या किया कि युवावस्था में जो सब सहारे दिए थे वो सब वापस ले लिया। नहीं नहीं नहीं, अब तुम हमारे काम के नहीं हो, अब कुर्सी छोड़ दो, अब ये धन तुम छोड़ दो, अब इस कुर्सी पर हम किसी युवावस्था वाले को बैठाएंगे और ये धन संपत्ति सम्मान और सुविधा को हम उसको देंगे, तुम हमारे काम के लायक नहीं रहे, अब तुम जाओ। क्या मुसीबत हुआ, अब क्या करें? तो ये सब छूटता गया, सब छूटता गया। और जो थोड़ा बहुत शेष बच गया है वो भी छूट जाएगा। इन बातों को हम सब लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो मेरे सामने जब प्रश्न आया तो मैंने भला मनाया। हमने कहा बहुत अच्छा हुआ कि मेरे परमात्मा इस देखे हुए जगत का दृश्य बनकर मेरे सामने नहीं आए, अच्छा किया उन्होंने। अगर दृश्य बनकर आ जाते तो जैसे सब दृश्य मेरी आंखों के सामने से भाग जा रहे हैं वैसे वो भी भाग जाते, तो फिर तो मैं अकेली रह जाती। तब तो मेरा वही हाय रह जाता कि अब किसका सहारा पकड़ें, अब कौन ऐसा है असल आधार कि जिसको ले करके मैं सदा सदा के लिए निश्चिंत हो जाती। तो स्वामी जी महाराज के सिखाने समझाने से थोड़ा साहस तो आया था और उसी साहस के बल पर मैंने ये सोच लिया कि अच्छा है भगवान आप छिप करके रहे, आप अदृश्य होकर रहे, आप देखने सुनने में नहीं आए, तो मेरे लिए एक रास्ता बच गया। क्या रास्ता बच गया कि जो देखने सुनने में नहीं आता है और जो देखे हुए दृश्य के समान मेरी आंखों से ओझल नहीं हो सकता है लेकिन सदा सदा से है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि है, संत कबीर ने कहा कि है, नीरज जी ने कहा कि है, क्राइस्ट ईसा मसीह ने कहा कि है, पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि है, तो मैं क्या करूं? मैं जानती तो नहीं हूं लेकिन इन सब संत महापुरुषों ने कहा कि है तो मेरे लिए एक चांस बच गया है कि वो जो परमात्मा देखने सुनने समझने में नहीं आता है लेकिन इतने सब संत महापुरुष कह रहे हैं कि है, वेद शास्त्र में लिखा हुआ कि है, तो एक बार उसको मान करके देखो कि क्या होता है। ये श्रद्धा भक्ति की बात नहीं है, ये हारे हुए जीवन की कथा है। संसार के सब दृश्य चलचित्र की भांति आंखों के सामने आ रहे हैं और निकल जा रहे हैं और जिन आंखों से मैंने संसार को देखना आरंभ किया था वो आंखें भी मेरा साथ छोड़ रही हैं जी, छोड़ रही हैं ना। एक दिन ऐसा था कि रात्रि के समय बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म ड्राइंग पेंटिंग मैं कर लेती थी और आज का दिन है कि खुले प्रकाश में दिन के समय बैठ करके दो चार चिट्ठियां लिख दूं तो सिर दर्द से परेशान हो जाती हूँ। जिन आंखों से मैंने देखे हुए संसार का सुख लिया था वो देखा हुआ संसार तो धीरे धीरे खिसक ही गया, जिन आंखों से देखा करती थी वे आंखें भी छोड़ रही हैं मुझको। तो भला हुआ कि परमात्मा जो है वो देखे हुए में शामिल नहीं रहा। इसलिए डरिए मत, सोचिए मत कि नहीं दिखाई देता है तो उसको कैसे माने। मान लीजिए, मेरी तरह झक मार के मान लो अथवा अपने हृदय की श्रद्धा भक्ति प्रेम के आनंद से मान लो, किसी भी तरह से मानो, उसको मानना पड़ेगा जरूर। और अगर उसको नहीं मानेंगे हम तो फिर हमारे जीवन में मानने के स्वभाव का जो उपयोग है वो कुछ नहीं रह जाएगा। तो माना, अब फल क्या हुआ? तो बड़ा अद्भुत फल है, परमात्मा देखने में नहीं आया उसने आकर के मेरे सामने खड़े होकर कभी कहा नहीं कि मैं परमात्मा हूँ और मुझको मान लो तो तुम्हारा दुख मिट जाएगा, ऐसा उसने नहीं किया। लेकिन संत महापुरुषों की वाणी सुनकर, गुरु के वाक्य का आधार लेकर, जिन साधकों ने बिना देखे बिना जाने परमात्मा को माना, उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हो गया कि अब बड़ी विचित्र बात हो गई। ऐसा नहीं कि धनुषधारी बन करके सामने खड़ा हो गया कि मुरली मनोहर बन के सामने खड़ा हो गया, सो नहीं, बड़ा भारी परिवर्तन उसके जीवन में आया कि अब अपने को निश्चिंत और निर्भय करने के लिए आंखें खोल करके संसार की ओर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या हो गया कि शांत हो रहो, चुप रहो, खुली आंखों से जगत को देखो अथवा बंद आंखों से अपने भीतर समा जाओ। वह जो नित्य निरंतर अपने ही में विद्यमान रहने वाला परमात्मा है, वो अपनी उपस्थिति का आभास तुमको दे देगा। देखो, तुम्हारे गुरु ने कहा था कि तुम्हारा परमात्मा तुम्ही में विद्यमान है, तो अपने गुरु की वाणी पर विश्वास किया तुमने। अब देखो, तुम्हारे गुरु ने जो कहा था उसी के अनुसार मैं तुम्हारे साथ विद्यमान हूँ। इतना प्रत्यक्ष और इतना जोरदार आश्वासन उस परमात्मा की ओर से विश्वासी साधकों को मिल जाता है, अनाथपन का दुख सदा के लिए खत्म हो जाता है। जागृत में, स्वप्न में कभी भी ईश्वर विश्वासी को ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेला हूँ, मैं अनाथ हूँ, ऐसा कभी नहीं लगता है। कभी भी उसे अपने लिए अन्य सहारे को ढूंढने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मैं क्या करूं, मैं कैसे रहूं, मैं कहां जाऊं, ये सब उसको नहीं सोचना पड़ता। क्यों नहीं सोचना पड़ता कि प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा उसको कब मिलेंगे ये तो परमात्मा जाने, लेकिन अज्ञात रूप से परमात्मा की विभूतियां उस विश्वासी साधक के जीवन में इस प्रकार से भरने लग जाती हैं कि वो समझता नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन आंखें बंद करके अकेले में, एकांत में उसे अपने में ऐसा एक विशेष बल मालूम होता है, ऐसी एक विशेष सरसता मालूम होती है कि वो उसी में मस्त रहने लग जाता है। तो मेरा ऐसा विश्वास बन गया कि आदमी को अपने आप में जब तक वह बल और वह विश्वास और वह रस प्रकट नहीं मिलेगा, तब तक उसको दुनिया के किसी आधार पर निश्चिंतता और शांति मिल जाए अथवा वियोग जनित पीड़ा खत्म हो जाए, ये कभी संभव नहीं है। भले कुछ काम करके अपने को बहला लो, भले कुछ स्थान का परिवर्तन करके अपने को बहलाने की कोशिश करो, भले बुद्धि के बल पर, बौद्धिक और मानसिक योग्यता के बल पर अपने को धीरज देने की कोशिश करो, कुछ भी करो, मोहजनित पीड़ा जो है, प्रिय वियोग का दुख जो है, वो परमात्मा के प्रेम रस से ही मिटता है और किसी प्रकार से मिट नहीं सकता। जीवन भर नहीं सकता। बुद्धि का जो बल है वो स्व तक पहुंचता नहीं है। मैंने भी बुद्धि का बड़ा सहारा पकड़ा था, अपनी बुद्धिमता का बहुत बल था मुझको, और समझा बुझा करके मैं अपने को ठीक कर लूंगी, इसमें मेरा भी बड़ा विश्वास था किसी समय, लेकिन समझाने बुझाने पर भी काम नहीं बना। सबसे उच्च शिक्षा में सबसे आखिरी परीक्षा दे करके मैं विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से बाहर होने लगी तो मेरा हृदय हाहाकार करने लगा। मुझे भीतर से ये आवाज आने लगी कि 14 वर्षों का समय अध्ययन में लगा करके देह को धुन डाला मैंने, साहित्य के लिए, विज्ञान के लिए और दर्शन के लिए बहुत कुछ किया, और आखिरी प्रायोगिक परीक्षा दे करके बाहर निकलने लगी तो हृदय रोने लगा। क्या मालूम हुआ कि 14 वर्ष का सारा परिश्रम बेकार गया। क्यों? क्योंकि बौद्धिक विकास से जीवन का अभाव नहीं मिटता है, भीतर सब सूना सब अंधकार। तो पटना यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है उसमें से मैं बाहर निकल गई थी तो एक बार मैंने पीछे फिर करके विश्वविद्यालय को प्रणाम किया और मैंने कहा कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम तो अपनी जगह पर ठीक हो भाई, आबाद रहो। मुझे जो चाहिए था तो नहीं मिला, आ गई। बौद्धिक विकास से जीवन का अभाव नहीं मिटता है, बौद्धिक विकास से सदा सदा का असल आधार आदमी को नहीं मिलता है, क्योंकि बौद्धिक तत्व जो है वो भौतिक तत्व है। ईश्वर विश्वास के बल पर जब अलौकिक ईश्वरीय विभूतियों का प्राकट्य अहम रूपी अणु में से होने लगता है तब अपनी असमर्थता का नाश होता है, चिंता और भय का नाश होता है, नीरसता का नाश होता है, तब उस रस को लेकर के व्यक्ति सदा सदा के लिए निश्चिंत और निर्भय होता है। बिल्कुल सच्ची बात है, और हम सब भाई बहनों को जीवन के उस मौलिक सत्य में आस्था रखनी चाहिए। नहीं तो आप देखिए ऊंचे से ऊंचे सुख की घड़ियों को भी आपने अनुभव किया है। हरेक भाई बहन को प्रकृति के मंगलमय विधान से जीवन में अनेक बार अच्छे अच्छे सुख के अवसर आते हैं और आप ही कहकर सुनाते हैं कि उन सुख की घड़ियों में भी अपने को सूझता है कि भाई ये तो आने जाने वाला है, इसमें तो जीवन नहीं है, तो जो सदा सदा के लिए रहने वाला है उसको पकड़ना है, सूझता है। ये चेतना मानव मात्र को उस परमात्मा ने दिया है, इसलिए सूझता है आदमी को। और मैंने तो बड़ी बड़ी प्रतिकूल घड़ियों में इस चेतना को अपने को थामते हुए देखा है, पाया है। इस आधार पर अपने आत्मीय भाई बहनों की सेवा में मैं यह निवेदन कर रही हूँ कि सुख भरी परिस्थिति है तो क्या और दुख भरी परिस्थिति है तो क्या, परिस्थितियों को सत्य मत मानो, बड़ा धोखा होगा, अवसर निकल जाएगा, परिस्थितियां संसार की संसार में रह जाएंगी, और जब सब कुछ छूटने लगेगा तो अपने को अकेला और निराधार पा करके बड़ी बुरी दशा हो जाएगी। परमात्मा ने अथवा हमारे रचयिता ने जिन्होंने हम लोगों को बनाया है वो इस दुनिया में आ करके निराधार हो करके हाय करके जीने के लिए और हाय करके मरने के लिए नहीं बनाया है। जो ईश्वरत्व जो ईश्वरीय विभूतियाँ सामर्थ्य के रूप में शांति के रूप में ज्ञान के प्रकाश के रूप में और प्रेम के रस के रूप में हमारे ही अहम रूपी अणु में से प्रकट होने वाली हैं, उन अलौकिक तत्वों को प्रकट होने देना हमारा आपका वर्तमान का परम पुरुषार्थ है। कभी कभी तो इतना आनंद आ जाता है मुझे किसी किसी संत के चरित्र को देख करके कि कैसे सीमित व्यक्तित्व के भीतर जब जब ईश्वरीय विभूतियां प्रकट होने लगती हैं तो इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि साधक स्वयं नहीं सोच सकता है यह सब कैसे हुआ, यह सब कहाँ से आया, यह सब किसने दिया। रमण महर्षि जी के जीवन का एक जीवन की एक घटना मैंने सुनी। वो तो अहम शून्य अनंत तत्व से मिले हुए महात्मा थे, बैठे रहते थे घूम घूम चुपचाप, बोलते बहुत कम थे। उसने किसी दुखी परिवार में आकर के सुनाया, दुखी परिवार तो संतों के पास भी आता है तो अपना दुखड़ा ही सुनाना पसंद करता है। स्वामी जी महाराज के पास तो कोई कोई आकर के सुनाता, महाराज ये झंझट हो गया, ये झंझट हो गया, ये झंझट हो गया, कहीं आर्थिक संकट है, कहीं लड़कियों के विवाह शादी का झंझट है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो पहले तो महाराज खूब हंसते और कहते भले आदमी साधु संत के पास जा करके मुक्ति भक्ति मांगनी चाहिए कि फकीरों के पास आकर के धन मांगते हो। तो पहले तो खूब हंस देते कि तुमने भी क्या सोचा है, अरे नंगे फकीर के पास आकर के तुम धन की बात करते हो, क्या बात है भाई, ऐसे करके हंस देते। साधु संतों के पास आओ तो मुक्ति भक्ति की चर्चा करो, यहाँ आकर के भी तुम वही दुनिया के बखेड़ा ले आए हमारे पास, बिता देते। रमण महर्षि के संबंध में मैंने सुना कि उनके पास भी लोग ऐसे ही आते ही थे दुखड़ सुनाने के लिए। तो एक पति पत्नी आए और उनकी 12 वर्ष की लड़की बीमार थी, उसकी हालत बहुत खराब थी, सूचना आई थी कि हालत बहुत खराब है जल्दी वापस आओ। तो माता पिता ने संत को प्रणाम किया और कहा कि महाराज ऐसी ऐसी हालत है। तो सब लोग जानते थे कि इनका आशीर्वाद हो जाए तो ठीक हो जाएंगे, वो सब बहुत तरह की बातें रहती हैं। तो सुन लिया, कोई उत्तर नहीं दिया, वे लोग तो व्याकुल हैं वापस जाने के लिए, जल्दी जाएं लड़की की हालत खराब है जाके देखें। तो फिर दूर आके कहा कि महाराज ऐसी ऐसी हालत है, फिर महर्षि ने कोई उत्तर नहीं दिया और इनकी व्याकुलता और बढ़ती जा रही है। तो आस पास में बैठे हुए संत के भक्त जो होते हैं वो कुछ अपना दीपांश लगाते हैं। तो एक उनका भक्त आगे बढ़कर के कहने लगा, महर्षि इन लोगों का ऐसा ऐसा हाल है, इन्होंने आपके सामने अपना दुख सुनाया है, मतलब कुछ उत्तर दीजिए, कह दीजिए कि लड़की अच्छी हो जाएगी और क्या। इतना खुल के उन्होंने नहीं कहा, फिर से उनकी याद दिलाई तो महर्षि ने उनके मस्तिष्क पर जब इतना जोर डाला गया तब उनके ध्यान में आया तो उन्होंने क्या कहा कि महर्षि कुछ नहीं जानता है, महर्षि कुछ नहीं कर सकता, तुमने सुना दिया, सुनने वाले ने सुन लिया, उसको जो करना होगा करेगा, महर्षि कुछ नहीं जानता। अहम शून्य, अपने में अपना करके कुछ है नहीं, तो जिन संतों का जीवन अहम शून्य हो जाता है उनकी शक्ति परमात्मा की शक्ति से जुट जाती है, तो उधर ही का प्रकाश इस सीमित व्यक्तित्व के माध्यम से प्रकाशित होता रहता है, उन्हीं का अनंत प्रेम प्रभु विश्वासी भक्तों के व्यक्तित्व के माध्यम से संसार में प्रसारित होता रहता है, तो प्रभु का अनंत ज्ञान, प्रभु का अनंत प्रेम, प्रभु की अनंत सामर्थ्य, प्रभु की अनंत शांति, यह सब भक्तों और संतों के व्यक्तित्व के माध्यम से संसार में प्रसारित होता रहता है, बढ़ता रहता है, बंटता रहता है, फैलता रहता है, स्वयं वे आनंदित रहते हैं और उनके नजदीक आने वाले, उनके संपर्क में आने वालों को भी आनंद की लहरियों का स्पर्श होता रहता है जो जीवन को बदलता रहता है। स्वामी जी महाराज कभी कभी ये व्याख्यान के द्वारा जो सत्संग की विधि है इससे कभी कभी उनका जी बड़ा हट जाता, खिन्न होता, तो कहते कि देवकी जी आज उपदेष्टा गुरु की आवश्यकता नहीं है संसार में, उपदेष्टा गुरु की जरूरत नहीं है, आदमी इतना दुर्बल हो चुका है, अपनी भूलों से आदमी आज इतना शक्तिहीन हो चुका है कि आज तो ऐसा गुरु चाहिए प्रभु के प्रकाश और उस अनंत के प्रेम से भरा हुआ, ऐसा गुरु चाहिए कि जिसके संपर्क में आने से ही साधकों की सब दुर्बलताओं का नाश हो। आज उपदेश का गुरु की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि उपदेश को सुनकर, सच्ची बातों को सुनकर, उसको ग्रहण कर लेना और उस पर आचरण करना, इस प्रकार की सामर्थ्य ही आज भाई बहनों की सामर्थ्य कम हो। तो मैं कभी कभी बोलती, महाराज जी जब बैठे होते तो और भी निर्भीक होकर के और उत्साह में भर के और उनकी उपस्थिति से अपने जीवन का स्तर कुछ ज्यादा ऊंचा लगता था। जितना जितना निर्विकार नहीं हो गया है उससे अधिक निर्विकारता मालूम होती थी। उनके पास बैठे रहो तो ऐसा लगता था कि मेरी तो सब समस्या खत्म हो गई, ऐसा लगता था। मैं अलौकिक जीवन में हूँ ऐसा अपने को भास होता रहता था। तो बड़ी जोर से और जोश में आकर के खूब ऊंची ऊंची बातें समझ के मैं दोहराया करती और दोहराते दोहराते कभी कभी श्रोताओं पर दृष्टि जाती, जैसे कि क्लास में पढ़ाने की आदत, तो पढ़ाते समय लड़कियों की आंखें हम देखा करते थे कि देखें ये लोग समझ रही हैं कि नहीं, देखें ये लोग पकड़ रही हैं कि नहीं। तो शुरू शुरू में ऐसे ही सत्संग में भी बैठ करके मैं श्रोताओं को देखा करती कि देखें ये उतनी ऊंची ऊंची बात में बोल रही हूँ तो सुनने वालों की पकड़ में आती है कि नहीं। और जब ऐसा लगता
ये सब ऊंची ऊंची चर्चा तो ऊपर ऊपर हवा में जा रही है, श्रोताओं की पकड़ में नहीं आ रही है, उनकी आंखों में चमक नहीं दिखाई देती है, उनकी मुखाकृति में प्रसन्नता का एक्सप्रेशन सब नहीं आ रहा है, ऐसा लगता तो मेरा उत्साह थोड़ा सा ठंडा हो जाता। तो बाद में मैं सुनाती महाराज को, तो महाराज कहते कि तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम देख के क्यों बोलती हो, मैं तो नहीं देख के बोलता हूँ, तुम श्रोताओं को देख करके क्यों बोलती हो और पीठ ठोकते, बेटा बोले जाओ, जितने ऊंचे स्टैंडर्ड से बोलने का तुम्हारा जी हो सब बोल जाओ, डरने की कोई बात नहीं है, जो जो उसका अधिकारी है वो तो ग्रहण कर ही लेगा, वो तो संभाल ही लेगा। और फिर कहते कहते कह जाते देवकी जी आज उपदेश था गुरु की आवश्यकता नहीं है तुम्हारा, आदमी इतना निर्बल हो गया है, इतना थकित हो गया है कि आज तो वैसा गुरु चाहिए कि जिसके संपर्क मात्र से श्रोताओं की सब निर्बलता खत्म हो। ऐसा होता है, नहीं होता है कोई बात नहीं है। दक्षिण भारत में चिनम्मा करके एक बहुत ही विवेकवती महिला जब शरीरों की असंगता में मस्त हो गई हो तो उनको न घर बार का ध्यान रहा, न कपड़े का ध्यान रहा, न शरीर का ध्यान रहा, नंग धड़ंग जंगल में पड़ी रहती थी। दक्षिण के एक संत उनसे मिले, मानव सेवा संत, उन्होंने खूब काम किया था हैदराबाद में, वो संत मिले तो कह दिया उन्होंने जाओ जाओ, तो उत्तर भारत वर्ष का एक प्रज्ञा चक्षु संत जब तुमको मिलेंगे तब तुम्हारा उद्धार हो। तो वो बेचारे प्रतीक्षा में थे कि अब उत्तर भारत वर्ष से प्रज्ञा चक्षु संत आएंगे तो मेरा उद्धार होगा। तो जब स्वामी जी महाराज मिले तो वे बड़े आनंदित हो गए, कहने लगे मेरे गुरु ने आपकी शरणागति हमको दी थी महाराज, अब हमको संभालिए। तो वो बताते थे कि वो चिनम्मा जंगल में नंग धड़ंग पड़ी रहती थी, कुछ पता ही नहीं है कब दिन हो रहा है कब रात हो रही है, शरीर और संसार से कोई संबंध ही नहीं है, अपने निजानंद में मस्त है। तो लोग जब मिलने के लिए जाते तो पुरुष लोग तो दूर दूर बैठ जाते क्योंकि स्त्री शरीर और यूं ही पड़ा है जंगल में जमीन पर, तो दूर दूर बैठ जाते। स्त्रियां जाती तो अपने पास से कोई चादर उधर कपड़ा उपड़ा लेकर के जाती, उनके बदन पर डाल देती और अपनी ही मस्ती में कभी भी उठ करके बैठ गई तो एकदम से मिलने के लिए और उनकी बात सुनने के लिए जो लोग गए होते सब में बड़ा हर्ष फैल जाता और कभी वो उनके मुंह से निकलता क्यों आया है, बोल तेरा क्या प्रश्न है। तो अनुभवी उनके पास जाने वाले अनुभव करने वाले लोगों ने बताया कि माँ के मुख से निकलता कि बोल तेरा क्या प्रश्न है, उनका पूछना और साधक के जीवन के सब प्रश्नों का हल होना एक साथ। जहाँ उन्होंने पूछा कि बोल तेरा क्या दुख है, जो भी दुख है सब खत्म। ऐसा होता है। तो ये मैं निवेदन कर रही थी कि बाहरी व्यवस्था के आधार पर हम व्यक्तित्व को संभाल लेंगे ये भूल है। मानसिक योग्यता के आधार पर हम जीवन को संभाल लेंगे ये भूल है। जब तक संसार में पद मर्यादा सुख सुविधा संगी साथी ये सब रहेंगे तब तक उस अविनाशी जीवन की मांग थोड़ी दबी हुई सी रहती है और समय पर जब वो मांग जागृत होती है तो आप सच मानिए कि विश्वास के आधार पर उस अनंत परमात्मा की आत्मीयता को स्वीकार करने मात्र से अपने ही अहम रूपी अणु में से वे तत्व प्रकट होने लगते हैं कि जिनके आधार पर आदमी की आंखों में त्रिभुवन का वैभव धूल हो जाती है, सब का महत्व खत्म हो जाता है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, किसी बात का कोई महत्व जीवन में नहीं रह जाता। अगर वे किसी वस्तु को हाथ में लेते भी हैं तो जन कल्याण की भावना से लेते हैं, अगर वे आए हुए साथियों को साथ में रखते भी हैं तो उनके कल्याण के लिए रखते हैं, और अपने लिए न कोई साथी चाहिए, न कोई सामान चाहिए, न आंखें खोलकर संसार को देखने की आवश्यकता होती है और न आसन मुद्रा साधने के अभ्यास की आवश्यकता होती है। वो हृदय का जो भाव है, मैं कैसे कहूँ, मुझसे कहा नहीं जाता, अहम रूपी अणु में जो अविनाशी तत्व विद्यमान है उसके प्राकट्य के साथ ही मनुष्य की सब समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और जब तक उस ज्ञान और प्रेम तत्व का विकास नहीं हुआ तब तक सारी तैयारी मिट्टी है, कुछ काम में नहीं आता, किसी से कुछ काम नहीं बनता है। ऐसा मैंने संत वाणी में सुना और ऐसा मैंने अपने जीवन के भूतकाल को भी देखा है, संत मिलन से पहले की दशा भी देखी है और संत मिलन के बाद की दशा भी देखी है। उस आधार पर बड़ी सच्चाई और आत्मीयता के साथ मैं निवेदन करती हूँ कि और ज्यादा इधर उधर भटको मत, और बेशी समय तैयारी में अध्ययन में लगाओ मत, बहुत हो गया बाबा, अपने ही जीवन की घटनाओं का एक एक पन्ना पढ़ लो तो उसी से धरती आसमान तक यहाँ से वहां तक सब प्रकाश फैल जाए, सब कुछ उजाला उजाला हो जाएगा, सब दिखाई देने लग जाएगा कि कहाँ क्या है। तो जो त्याज्य है उसका त्याग करना ही है, जो ग्राह्य है उसको ग्रहण करना ही है, जान बचेगी नहीं कितना भी अपने को फुसलाते बहलाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। और किसी भी वेश में रहो और किसी भी परिस्थिति में रहो और किसी भी नगर में रहो, चाहे जहाँ रहो, अगर उस अपने अंतर्निहित अहम रूपी अणु में ही व्याप्त ज्ञान और प्रेम तत्व के विकास पर आपकी दृष्टि चली गई तो काम हो गया। ज्ञान के प्रकाश में भी बड़ा रस होता है और प्रेम के रस में भी बड़ा प्रकाश होता है। ज्ञानी जन भी प्रेम के रस से सराबोर होते हैं और प्रेमी जन भी ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही विभूतियाँ उस अनंत परमात्मा की हैं। तो ज्ञान पंथ के साधक को भी सब कुछ मिलता है और प्रेम पंथ के साधक को भी सब कुछ मिलता है। अब जो पथ अपने को पसंद आवे जल्दी जल्दी पकड़ लो और छोटा छोटा कदम उठाना हमारा पुरुषार्थ है, और आगे बढ़कर मेरी दुर्बल बाहों को पकड़ लेना उस परमात्मा का स्वभाव है।